ओम शांति। हम सभी के बीच में हमारे वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय भ्राता मोहन भाई सिंगल जी उपस्थित हैं। हम सभी उनका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आप भी बाबा के यज्ञ के पुराने सेवाधारियों में से हैं। 1962 से आपको ये बाबा का परिचय मिला लखनऊ से, जहां से आपने 1963 में बैचलर डिग्री प्राप्त की और उसके बाद बिहार धनबाद यूनिवर्सिटी से आपने एमटेक किया और उसके पश्चात आपने 1967 से ONGC, आप जानते होंगे ये इंजीनियरिंग की काफी बड़ी ONGC जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, जिसके कई प्लांट्स में आपने 28 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। साथ साथ आप ईश्वरीय सेवाओं में भी लगे रहे और लौकिक सेवा भी करते रहे और उसके पश्चात आपने 1996 में आप एज अ सुपरिटेंडिंग जियोफिजिस्ट के रूप में ONGC में कार्यरत थे, तब आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और पूरी तरह आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और अनेक स्थानों पर गुजरात में, बिहार में, आसाम में आपने कई सेंटर्स खोलने में आप निमित्त बने और वर्तमान समय पहले आपने ज्ञान सरोवर अकेडमी में आप सेवारत थे, आज भी वहां सेवाएं चलती हैं लेकिन आप रहते शायद शांतिवन में हैं। अभी ज्ञान सरोवर अकेडमी के आप कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी अकेडमी में कार्य होते हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं, आप संस्था की जो मैनेजिंग कमेटी है उसके भी सदस्य हैं, राजयोग शिक्षा एवं शोध संस्थान के आप गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं, उसके अलावा जो इंजीनियर विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग है, उसके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर तो हैं, साथ में जो उसकी मैगजीन छपती है SEW करके, SEW न्यूज, SEW जो न्यूज छपती है उसके आप संपादक भी हैं और कई पर्यावरण, 7 पर्यावरण प्रदूषण जागृति अभियानों का आपने संचालन किया, उनका आयोजन भी किया और आपदा प्रबंधन अभियान, ऐसे 9 अभियान भी आपने सुचारू रूप से आयोजित किए हैं। जब पद यात्राएं निकली थी 1985 में, तब भी आप उन यूथ विंग के सचिव पद पर थे। ऐसे कई कार्यों में, यज्ञ के कई इम्पोर्टेंट कार्यों में आपका हिस्सा रहता है, आपका उसमें सहयोग रहता है और आज भी हेडक्वार्टर्स में रह करके अपनी विभिन्न सेवाएं यज्ञ में दे रहे हैं आदरणीय भ्राता राजयोगी ब्रह्म कुमार मोहन भाई जी। आपका जो विषय है वो है मन जीते जगत जीत।
ओम शांति। एक बार हम सब मिल करके उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा यज्ञ में हम सबने सुना है, साकार ब्रह्मा बाबा के साथ सारे ब्रह्मावत्स बोला करते थे। उसके लिए अंदर एक लंबी श्वास लेकर के और उसे फिर बाहर निकालते हुए हम सब ओम की ध्वनि करेंगे। ओ शांति। जब भी जीतने का शब्द आता है, जीत, विक्ट्री या मूविंग अहेड, तो जीत के साथ साथ क्या एहसास होता है, कोई जीत की कल्पना कीजिए, जीवन में जीता हुआ हो गेम में या कोई परिस्थिति में किसी में, तो जीत के बाद कैसा एहसास होता है, खुशी का और आनंद का, उमंग उल्लास, ये सब चीजों का एहसास होता है जीत के साथ। और जहां पर मन जीते जगत जीत की बात आती है, वो तो संसार की सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि लोगों ने कहा है सब कुछ जीता जा सकता है, भक्ति मार्ग में कहते हैं, लेकिन मन को जीतना, हाँ वो लोग तो असंभव ही बोल देते हैं और कठिन कहा जाता है दुनिया में, लेकिन बाबा ने उसे बिल्कुल सहज कर दिया। और सहज क्यों हो जाता है, क्योंकि आज की मुरली सुनी ना सबने, मुरली में क्या वरदान था, वरदान था ना, हाँ मास्टर वरदानी मूरत बाबा, यार उसमें ही उसी के एक्सप्लेनेशन में था कि जब कोई साकार चीज को देखते हैं तो उसे फॉलो करना बड़ा सहज हो जाता है, वरदानी मूरत। और जब हमें तो ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का मौका मिला काफी 6-7 साल तक, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय हम ब्रह्मा बाबा के सम्मुख थे जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, 17 और 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला, यही मधुबन में ही थे। तो उस संदर्भ में जैसा आज बोला ना, साकार को के साथ अगर देखा जाता है तो उस चीज को फिर बड़ा सहज हो जाता है समझना। तो इसीलिए मन जीतने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे यहाँ कौन है, जिसने जीता हुआ हो, और जो वास्तव में जगत जीत बना है वो तो एक ही आत्मा है, कौन, ब्रह्मा बाबा। तो उस संदर्भ में हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत तो बनना ही है, और कर्मातीत के राह पर अगर ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप्स पर भी चलते रहें तो सहज ही मन जीते जगत जीत बन सकते हैं। तो मन, कोई भी बात होती है उसका पता चलना चाहिए, एंड रिजल्ट होना चाहिए कि हाँ ये बात हुई। मानो हमारा तबीयत खराब है किसी का, तो भाई देखेंगे थर्मामीटर से, अगर नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम है तो यानी अब न ठीक नहीं है, या कोई बड़ी बेचैनी है, ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर से पता चल जाएगा कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ऐसे ही मन जीतने का क्या क्या लक्षण है, वो लक्षण अगर हमारे माइंड में क्लियर होंगे तो सहज ही हम सब भी इस राह पर चल सकेंगे। तो मन जीतने के कई लक्षण हैं, और जो ब्रह्मा बाबा में हमने देखे ना, उसके आधार पर एक तो हम लोग ये कहते हैं कि मन, जिसने मन जीता होगा उसका, उसके अंदर बिल्कुल हार्मनी होगी, यानी कि यहाँ दिमाग और दिल, ये दो चीज होती है, और अक्सर करके दिल और दिमाग बीच में कई बार फाइट होती है, युद्ध होता है, ये करूं या ना करूं, दिमाग एक बात बोलता है, दिल दूसरी बात बोलता है। तो इसलिए मन जीते जगत जीत का एक लक्षण ये होगा कि जितना जितना हम इसकी तरफ चलते जाएंगे, इस राह पर, मन जीतने की राह पर, तो दिमाग और दिल ये दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी में काम करेंगे, यानी दिमाग जो बात बोलेगा दिल गवाही देगा, दिल बोलेगा दिमाग गवाही देगा, और दोनों मिल करके उसका तीसरा लक्षण कैसे प्रत्यक्ष होगा, ये हेड है, ये हार्ट है, ये हैंड है, T3H। हाँ, तो हेड एंड हार्ट की जब हार्मनी होगी तो हैंड के द्वारा जो भी काम होगा ना वो बिल्कुल सफलता मुहूर्त कार्य होगा। जीवन में इन तीनों के बीच में परफेक्ट हार्मनी होगी। तो बाबा का हम यही देखते थे कि हेड एंड हार्ट की हार्मनी का एक लक्षण यह है कि कोई बात बाबा ने सुनी और तुरंत ही हेड एंड हार्ट की हार्मनी थी तो एकदम उसका उत्तर बड़ा सहज मिल जाता था बाबा के द्वारा। सुना, बाबा ने देखा, एकदम ये एक पहली स्टेज है जो मन जीते जगत जीत, मन जिस उसके अंदर धीरे धीरे हेड एंड हार्ट के बीच में हार्मनी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हेड भी जो है ना वो हार्ट का ही एक है। हेड में भी कहते हैं दो पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, जैसे है आत्मा ब्रेन के थ्रू ही काम करती है, और लेफ्ट लॉजिकल होता है, लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि जो व्यवहार की जीवन की बातें होती हैं, और राइट ब्रेन जो होता है वो इमोशनल होता है, वैल्यू ओरिएंटेड होता है, भावनात्मक होता है, और राइट पार्ट जो है शरीर के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, तो हार्ट होता है लेफ्ट में, इसीलिए हार्ट को यूजुअली राइट ब्रेन के साथ रेफर किया जाता है। यानी कि दोनों जो ब्रेन है उसके अंदर परफेक्ट बैलेंस होगा। और क्या उसमें बाबा का हम देखते थे कि बाबा से जब भी पहले मिला करते थे तो जब 62-63 में जब ज्ञान में आए उस समय जब बाबा से मिला करते थे, बाबा मिलने का तरीका भी बहुत अद्भुत था। हाँ, आप सबने देखा होगा बाहर भी एक चित्र है ना, तो बस बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि देते ही ना जैसी दृष्टि लेते थे अशरीरी हो जाते थे, और बस बाबा का ऐसा वहां फैला हुआ होता था, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, और अशरीरी अवस्था होती थी। तो इसीलिए देह का भान भूल करके चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई हो, बस बाबा की बाह में समा जाते थे और एकदम विदेही स्थिति का अनुभव करते थे। क्यों? क्योंकि बाबा खुद विदेही स्थिति में स्थित रहता था, और बाबा ने यह पाठ पक्का किया हुआ था। कौन सा पाठ? लिख लिख के जो आत्मा का किया था ना, तो जिसको भी बाबा दृष्टि देता था वो तुरंत ही विदेही हो जाता था। तो ये हम देखते चले कि हमने भी अगर आत्मिक पाठ पक्का किया हुआ होगा तो जिस भी आत्माओं के संपर्क में आएंगे, जिन्हें भी दृष्टि देंगे, वो आत्मा भी थोड़े समय के लिए विदेही हो जाएगी। तो एक ये बात बहुत ही वंडरफुल, बाबा का ये अनुभव होता था, बाबा की बाह में जाते थे, बाबा ऐसे करते थे, थोड़ी देर के बाद हाँ वो अनुभव कर लिया, हाँ बच्चे आओ आओ बच्चे, यानी कि कॉन्शियसनेस को ना फिर से शरीर के, कोई आत्मा शरीर छोड़ के जाती नहीं है, लेकिन आत्मा जैसे शरीर के भान से परे हो जाती थी फिर शरीर के भान में, ऐसे बाबा प्यार से वो थपथपाते थे, टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, एक जाता था दूसरा आता था, फिर हर एक को ये अनुभव होता था, क्योंकि बाबा ने अपनी स्थिति ऐसी बनाई थी। इस कारण से जिस आत्मा के प्रति भी दृष्टि होती थी, जो बाबा का ऑरा था लाइट का इतना मैग्नेटिक, वो भी उसी में थोड़ी देर के लिए हो जाता था। जैसे मानो हम सब जानते हैं पृथ्वी हर चीज को नीचे अपनी तरफ खींचती है ना, अगर हम मानो कोई चीज ऊपर फेंके, ये फेंका, तो जितनी देर तक हमारी ये शक्ति ज्यादा रही उतनी देर तक तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन जहां फिर पृथ्वी की शक्ति ज्यादा हो गई वो पृथ्वी की उधर, तो थोड़ी देर बाद फिर हम सब देह अभिमान में, क्योंकि देह अभिमान का ही जीवन भर अभ्यास किया हुआ था, तो लेकिन थोड़े समय के लिए भी बाबा इतना पक्के देह अभिमान को, जो जन्म जन्मांतर का देह अभिमान का अभ्यास है, उसको भी जैसे दबा करके देही अभिमानी के पाठ में ले जाता था थोड़े समय के लिए। और फिर जब फिर देह अभिमान में आते थे तो फिर वो किया, तो इतनी शक्ति बाबा। ये एक स्थिति, एक तो ये हमें अपने को चेक करना है। और साथ में क्या अनुभव होता था बाबा का, कि बाबा आपने सुना है ना, पहले बाबा जब मिलते थे, हाँ बच्चे अपनी जीवन कहानी लिख करके लाओ, हम सब लोगों ने अपनी जीवन कहानी लिखी हुई है, बाबा को देते थे, जितना भी जिसका होता था 10, 20, 25, 50 पेज ऐसा अपने। और बाबा का ये, जिसके भी अपना मन जीते जगत जीत होगा, उसके मन वाणी और कर्म, बाबा का हाथ वहीं जाता था जहां कुछ करेक्शन करनी, कोई पूरा बाबा पढ़ते नहीं थे, वो देखा ऐसे एक मिनट में ही जैसे 50 पेज, लेकिन उन जगह ही बाबा की उंगली रुकती थी, बच्चे ये जैसे हम लोग अपना पोता मेल देते थे हिसाब, भाई ये इतना कमाया, इतना खर्चा इसमें किया, इस उससे क्या, बस बाबा जहां देखते थे, और बस देखते ही जहां पर भी करेक्शन की जरूरत होती थी बाबा की निगाह वहीं रुकती थी, ये ब्यूटी थी। तो इसमें ऑटोमेटिकली टाइम बहुत सेव हो जाता है। हम सब लोगों का भी यही अभ्यास, कई चीजों का हम देखते हैं, एडिटिंग करनी होती है, देखना, तो सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, धीरे धीरे जितना अभ्यास होता जाता है उधर ही वैसे ही बुद्धि होती जाती है। बाबा से जब पहले मिलते थे, बाबा कहते थे हाँ बच्चे आओ, हाँ, और जो मतलब बाबा से हमारे प्रश्न होते थे वो प्रश्न बाबा से पूछते थे, बाबा उसका जवाब देते थे, अपनी स्थिति का, सेवा का, कोई पुरुषार्थ का, योग की अवस्था का, जो भी जैसे। लेकिन जितना धीरे धीरे बाबा मन जीते जगत जीत की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो हमने देखा 1962 में बाबा को जाके प्रश्न वगैरह बताते थे, बाबा उत्तर देते थे। फिर लगभग 66-67 में हमने देखा, 67-68 में, कि बाबा के सम्मुख गए, बाबा को बताया, बस एक दो लाइन ही बोलते थे, बाबा कहते थे समझ गए बच्चे, बस। तो अरे बाबा हमने तो अभी बोलना ही शुरू किया है अभी, लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, बाबा समझ गया। और मतलब कुछ बोलते थे थोड़ा, लेकिन 17-18 जनवरी को हमने क्या अनुभव किया, वो एक विशेष बात, कि हम 17 जनवरी की सुबह यहां आ गए थे, आसाम में इंजीनियरिंग करने के बाद आसाम में पोस्टेड थे, आसाम से बस ड्रामा अनुसार बाबा ने यहां बुला लिया, यहां आ गए, तो दो दिन बाबा के साथ साथ थे, 17 जनवरी 1969 और 18 जनवरी। तो उसमें क्या देखा कि जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, और बाबा हम बस कि ये पूछेंगे बाबा से, और थोड़ा बाबा ने दृष्टि दी, और बाबा दृष्टि देके कहते थे बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए, यानी कि हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और मन में हमारे क्या प्रश्न है वो प्रश्न को जान करके बाबा तुरंत उसका समाधान कर देते। आश्चर्य की बात है ना, एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, दो दिन में 6-7 बार ऐसा हुआ बाबा के सम्मुख जाएंगे, क्योंकि और पार्टियां नहीं थी उस समय, तो बाबा से फ्रीली मिल लिया करते थे, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए, समाधान भी साथ में दे दे। ये ऐसी स्थिति है मन जीते, जिसने अपना मन जीत लिया होगा ना, वो दूसरे के मन को भी तुरंत पढ़ सकता है, और मन में क्या प्रश्न है उसका समाधान भी दे सकता है। ये एक स्थिति मन जीते जगत जीत की और देखी बाबा ने, क्योंकि हम सबको भी वैसे ही, जैसे पानी होता है ना, पानी बड़ा निर्मल पानी है, हलचल नहीं है पानी में, हम अपनी छवि भी उसमें देख सकते हैं, लेकिन एक कंकड़ फेंक दो उसमें तो क्या होगा, लहरें पैदा होंगी, फिर अपनी छवि स्पष्ट दिखेगी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो लहरें हो गई। ऐसे अगर हमारे मन में भी संकल्पों की कुछ भी लहर हुई तो हम दूसरे के संकल्पों को पढ़ भी नहीं सकते, और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, अंत समय ऐसी स्थिति आएगी, बाबा ने कहा, जब चारों तरफ हाहाकार होगा, चारों तरफ अति जो विनाश की लीला होगी, कहीं अर्थक्वेक होगी, कहीं पर बाढ़ आ रही होगी, कहीं सूखा होगा, इतना ज्यादा, तो तड़पती हुई आत्माएं चारों तरफ से आएंगी। उस समय ये समय नहीं होगा कोई आपको कहने का, लेकिन वो आएंगे, बस आप उनके मन के भावों को पढ़ करके जो भी उनके मन में अतिरिक्त इच्छाएं होंगी, कोई साक्षात्कार की इच्छा लेके आएगा, कोई दुखी होगा, कोई अभाव होगा किसी के जीवन में, कुछ भी होगा, जो इच्छा लेकर के आएगा, हम वरदानी मूरत आत्माओं के सामने बस एक ही शब्द निकलेगा, क्या भक्त कोई इच्छा लेकर आता है तो भगवान के मुंह से क्या शब्द निकलता है, तथास्तु। बस हम अपने को कम ना सोचें, हम सब वास्तव में भगवान के फुट स्टेप पर चलने वाले हैं, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम, और ऐसे अनेक बार अनुभव होते हैं, लोग अनेक इच्छाएं लेकर के आते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन बाबा हम बच्चों के द्वारा उनकी इच्छा पूर्ण कराता है। हम बच्चों में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, किसी में भी नहीं, लेकिन करण करावन हार बाबा है, और बाबा को प्रत्यक्षता करानी होती है हम बच्चों के द्वारा। इसलिए अपने को हम कभी भी कम नहीं समझे, हम कैसे करेंगे नहीं, बाबा आपको जो भी कार्य कराना हो वो बाबा इस तन मन के द्वारा कराओ, इसके द्वारा, बस बाबा की कंडीशन यही है कि तन और मन ये दोनों पवित्र हो, तन में भी कोई विकार की वो ना हो और मन भी हमारा निर्मल। जितना जितना ये होता जाएगा हम अनुभव करते जाएंगे कैसे बाबा भक्तों की इच्छा पूर्ण करता जा रहा, हमारे द्वारा करवाता जा रहा है। तो एक तो ये मन जीते जगत जीत का ये और देखा सारा, क्योंकि बाबा के अपने मन में संकल्पों की नहीं लहर नहीं थी। और क्या होता है जब बिल्कुल मन जीते जगत जीत, बाबा ने कई बार साकार मुरली में बोला है, बच्चे बस थोड़ा समय कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे, मन जीते जगत जीत इन सब स्थिति का, और जब बिल्कुल ये अनुभव हो जाएगा, ये स्थिति ज्यादा देर नहीं रहती है, उसके बाद शरीर छोड़ देंगे। तो देखो हम बच्चों के द्वारा भी ना, मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा अंतिम दिन भी, और बाबा ने क्या उस दिन यीशु दादी से, जो यीशु दादी हैं जानते हैं आप लोग ना, सारा हिसाब किताब शुरू से रखा है, तो उनको बोला आज जितने भी पत्र लिखाने हो बच्चे पत्र लिखा लो, और जो जो काम पेंडिंग थे वो बाबा ने कहा सारे काम जो अधूरे हैं आज करो। तो जब हमारी भी ऐसी स्थिति होगी अंत में मन जीते जगत जीत की कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ने की, हमें भी आभास हो जाएगा कि हाँ अब हम ये शरीर त्यागने वाले हैं। भीष्म पितामह का जो बाबा ने भी बोला ना कुछ दिन पहले, भीष्म पितामह की तरह, पितामह को यही आइडिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। हम सब भी वास्तव में इच्छा मृत्यु के वरदान को प्राप्त किए हुए हैं, हमें उसको रियलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे अपना इच्छा नहीं होगी हम इस देह को त्याग नहीं सकते। बाबा भी कहता है कई सबके अनुभवों में, बाबा ने कहा बड़ी दादी के भी अनुभव में बाबा ने बताया था, और हमें याद है कि जो भी आत्माएं जाती है ना उनके अनुभव में, जब कई बार हमने ये सुना है बाबा ने कहा है, जब ये बच्ची, क्योंकि नहीं तो दादी हमेशा कहा करते थे, बस मैं तो बाबा को बोलती हूँ कि बाबा जितना भी सेवा करानी हो इस शरीर से करा लो और बस जन्म ना लेना पड़े। लेकिन अंत में जब शरीर की ऐसी स्थिति हो गई थी बड़ी दादी जी की, तो बाबा ने उस समय बाद में बताया था, बच्ची कह रही है कि बाबा अब देखो मैं कोई सेवा तो कर नहीं पा रही हूँ, अब बस आप मुझे बुलाओ, मैं शरीर ये छोड़ने को तैयार हूँ। तब बाबा ने बुलाया। हमारी इच्छा के विरुद्ध बाबा बुला भी नहीं सकता। तो इसीलिए एक तो कभी भी जितना भी कष्ट हो, कुछ भी हो, कभी भी इस देहित को त्याग करने की इच्छा ना हो, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं सारा। और बच्चे आज जितने भी पत्र लिखाने हो, वो जो नक्की लेक का म्यूजियम है हमारा, आप सबने भी देखा हुआ होगा जो पुराने हैं, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ था बिल्डिंग, उसी दिन ही बाबा ने जैसे उसको क्लियर किया। और रोज क्लास होती है शाम को 9:45, आप सबको मालूम है मधुबन में। उस दिन बाबा ने जमुना प्रसाद भाई है उनको बुला करके कहा 6:30 कि आज बाबा अभी क्लास 7:00 कराएगा, सब बच्चों को इन्फॉर्म कर दो। तो देखो इस बात का आभास हो जाना कि हाँ अब बस मैं आत्मा अब ये शरीर को त्यागने वाली हूँ, बाबा बस मेरे सारे कर्म बंधन इससे चुकते हुए और मैं आत्मा अब आपके पास आई की आई। और जब रेडी होकर के जाते हैं ना, तो क्या होगा, चारों तरफ से जब समेटा होगा तो वास्तव में अंत मते सो गति, अंत में अगर ये याद आ गया ये याद आ गया तो वैसी गति हो जाएगी। और जब ये होगा कि हाँ अब हम जा रहे हैं, उससे पहले ही सारा समेट लिया होगा और फिर बस हाँ बाबा अब हम आपके साथ चलेगी चले। ब्रह्मा बाबा ने भी हमें याद है जब शरीर छोड़ दिया और उसके बाद संदेशी आई और 13 दिन का भोग लगा, तो सबने पूछा बाबा आपको अंतिम स्थिति कैसी थी, कैसा अनुभव हो रहा था आपको। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा को यह आभास तो हो गया था कि बस अब ये पूरा अकाउंट सेटल हो गया इस शरीर के साथ, और लेकिन अंत में जैसे ना शरीर का ये, क्योंकि हार्ट का पेन भी था बहुत, और एक तरफ बाबा जैसे खींच रहा था हाँ बच्चे आओ, और एक तरफ ये दर्द, यानी अंतिम युद्ध भी बस लास्ट पेपर था जो बस बाबा ने क्लियर करा और उसके बाद बाबा वतन में चला गया। तो क्या है कि बाबा ने भी अभी भी बताया है, वो हम सब लोग देखेंगे कि अंतिम पेपर अभी हम बच्चों के सामने जो 2 पेपर आने हैं, वो बाबा ने बताया हुआ है बिल्कुल कि एक पेपर है शरीर का पेपर, ये सबके सामने आएगा, कोई ये ना समझे मैं तो हेल्दी हूं जवान हूं। एक पेपर शरीर का पेपर और दूसरा परिवार का पेपर, ये 2 पेपर सबके सामने आते हैं, लेकिन ये बहुत तीव्र गति से आएंगे। तो मैं जो बाबा की बात कर रहा था, बाबा ने उस दिन क्लास को प्रीपोन्ड कर दिया, हम सब भी जल्दी जल्दी भोजन वगैरह करके 7:15 तक पहुंच गए और 7:30 से उस दिन बाबा ने क्लास कराई। तो वैसे बाबा को ना एज ओल्ड थी, कई बार खांसी जैसे होती थी, तो कई बार हम लोगों को लगता था जैसे कि बाबा को खांसी हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है, आंखें भी गीली हो जाती थी, और फिर क्या होता था, खांसी रूपी परिस्थिति जब लगता था बहुत हावी हो रही है, बस बाबा के पास में ही अभी भी रखे ट्रांसलाइट का चित्र, लक्ष्मी नारायण का कृष्ण का रखा हुआ रहता था, बाबा कहता बच्चे देखो बस कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, अभी तो ये पुराने तत्व हैं, पुरानी बातें हैं, ये बहुत परेशान दुखी करते हैं, बस नई दुनिया होगी हमारी और वहां पर कितना कोई भी तत्व भी परेशान नहीं, आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र, ऐसी दुनिया में हम चल रहे हैं, बस वो खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी हो बच्चों को जो गम को खा जाए पूरा। और बच्चों को क्या करना चाहिए खुशी में, खग्गियां भी मारनी चाहिए, मालूम है ना, हाँ खग्गियां मारना ऐसे ये करके ना, कई बार बाबा ऐसे दिखाते भी थे, और जरा सी देर में जो इतनी तेज खांसी होती थी वो बस बाबा स्वस्थिति को इतनी मजबूत कर लेते थे कि खांसी रूपी परिस्थिति तुरंत गायब हो जाती थी। आती थी, बहुत वेग से आती थी, लेकिन बाबा की अपनी युक्ति होती थी, देखो कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। और ये बस जैसे ये स्वस्थिति को बाबा ने थोड़ा सा भी बच्चों के सामने वर्णन, बिल्कुल खांसी, और फिर वही मुरली ऐसे फ्लॉलेस मुरली चलती थी। ऐसे हम अपने को देखें कि हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो परिस्थिति मेरे ऊपर वार तो नहीं कर देती। वो परिस्थिति कितना समय तक रहती है, कितना समय तक और किस कितने उसका कैसा रूप होता है, वो सबको देखते हुए बस बाबा की तरह बस स्वस्थिति को हम मजबूत करें, उस परिस्थिति पर हम हावी हो जाए और वो परिस्थिति चली जाए। तो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय, वो उसका ये लिविंग एग्जाम्पल बाबा के सम्मुख हम लोग अक्सर करके देखा करते थे। जरा सी देर में ही ना वो तुरंत हवा हो जाती थी। और क्या उस दिन एक ये होता था, लेकिन उस दिन अंतिम मुरली के दिन ना, जो बाबा ने 18 जनवरी की रात को मुरली चलाई, उसमें बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी बाबा को गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है कि जब हम भी अपने पूरे कार्मिक अकाउंट सेटल कर लेंगे, कर्म जो के जो अकाउंट, तो हमारा योग बल जो है, हमारे जितने भी शरीर के व्याधियां हैं, भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। आप 18 जनवरी की रात्रि क्लास की मुरली सुनो, अभी भी वो मुरली ओम शांति भवन के नीचे जो कैसेट का वो है सीडी में, वो वहां मिलती है। और बस गौर से सुनना, एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न कोई गला साफ करने की जरूरत पड़ी। और जब अंत में ऐसी स्थिति होती है ना, मन जीते जगत जीत की, तो क्या होता है, वो हमने उस दिन भी अनुभव किया। बाबा मुरली चला रहे थे संदली पर बैठ के, हम भी सामने बैठे हुए थे, मुरली सुन रहे थे। मुरली सुनते सुनते हमें एकाएक एक संकल्प आया, चाहे तो पर्सनल बात, लेकिन सबके सामने कि एकदम संकल्प आया कि भई बाबा कुछ हमारे लिए बोले, जिससे और हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, बाबा कुछ बोले। बस इधर संकल्प आया, अब वो आत्मा तो बिल्कुल सिद्धि स्वरूप होके बैठी हुई थी, वो आत्मा संपूर्ण हो गई थी, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी, मन जीते जगत जीत हो चुकी थी। तो जैसे ही संकल्प आया, तुरंत बाबा ने कैच किया होगा, और तुरंत ही बस विद इन नो टाइम बाबा ने हमारे प्रति कुछ महावाक्य उच्चार दिए। और ये ही बात जो, क्योंकि हमारे सामने जो ब्रह्मा बाबा का स्वरूप था, वही हम सब का स्वरूप दुनिया वालों के सामने। और ब्रह्मा कौन, हम सभी तो मास्टर ब्रह्मा है, मास्टर क्रिएटर है। तो जिनकी भी हम सेवा करते हैं, जो भी आत्माएं आएंगी, वो सबके मन के भावों को पढ़ करके ना, और तुरंत ही जैसे ही संकल्प आया पहुंचा, और बाबा ने महावाक्य उच्चार दिया। तो ये बात जो है हम सबको समझने की है, ये क्लैरिटी तब होगी जब हम स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या बनते चले। इच्छा मात्रम अविद्या बाबा कहते हैं ना, अगर हमारे मन में भी कोई इच्छाएं हुई तो दूसरे की इच्छाओं को हम पढ़ नहीं सकते, और दूसरे की इच्छाओं को नहीं पढ़ सकेंगे तो उनकी इच्छाओं को हम पूर्ण भी नहीं कर सकते। तो इच्छा मात्रम अविद्या खुद बनने के लिए पहले हमें अब वर्तमान समय, अक्सर करके बच्चे ये बोलते हैं बाबा ने कहा कि बाबा विकारी संकल्प तो नहीं चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो थोड़े दिन पहले गुलजार दादी जी एक क्लास करा रहे थे यहाँ मधुबन वासियों का, हम लोगों का, तो दादी ने उसमें बहुत अच्छी एक बात कही। बाबे ने कहा ये कि बाबा ने बच्चों को ये तो सर्टिफिकेट दे दिया कि विकारी संकल्प नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प चलते हैं। लेकिन व्यर्थ संकल्प क्या, वर्तमान जो समय है उसके मुताबिक व्यर्थ संकल्प भी कौन सा है? कौन से व्यर्थ संकल्प है? बहुत अच्छा दादी ने बताया, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते। दादी ने बताया कि मानो हम योग करने बैठे हैं और योग में अनुभव करना चाहते हैं भाई, शांति का, शक्ति का, पवित्रता का, पांच रूपों का जो बाबा ने अभ्यास कराया है, और सूक्ष्म वतन का, मूल वतन का, नई दुनिया का, मतलब सभी ज्ञान की बातें, ये अनुभव करने के लिए हम योग में बैठते हैं, तो यही लक्ष्य होता है हल्के। लेकिन उस समय यदि हमारे मन में कोई सेवा का विचार आ गया, कोई उस समय हमारे मन में किसी अपने भाई बहन के उन्नति का, ये भी अच्छे विचार है, व्यर्थ विकारी विचार नहीं है, लेकिन दादी ने बताया आज के परिपेक्ष में ये भी व्यर्थ विचारों में गिना जाएगा, इसका भी अपना बोझ होता है। क्यों? क्योंकि हम बैठे हैं बाबा की याद और उस अनुभूति के लिए, और सेवा की तरफ हमारे विचार चले गए, कोई और तरफ चले गए जो विकारी नहीं है, लेकिन वो व्यर्थ में गिने जाए। तो इतना मन के ऊपर हमारा कंट्रोल हो, जो मन भी हमारी इच्छा के विरुद्ध संकल्प ना करे, जो हम मन को ऑर्डर दें, जैसे बाबा ने ऑर्डर दिया था। सुना है बाबा ने कैसे ऑर्डर दिया था? ब्रह्मा बाबा ने जब 1936 में बाबा को ये ज्ञान हुआ, बस वैराग्य हो गया, बाबा एकदम एकांतवासी हो गया, लेकिन तभी भी बाबा ये अनुभव करता था कि मन तो मेरा भाग जाता है, जैसे हम सब लोग भी अनुभव करते हैं, तो क्या करें। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा, गौर से सुनना क्या लिखा बाबा ने। बाबा ने मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना चाहिए, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और हे मन मंत्री, तू बलशाली हो गया, तू जिधर जिधर कहता रहा मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा, और तूने मुझे बहुत कमजोर बना दिया, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, मैं राजा हूं, तू मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया, मैं अपनी सीट पर अब सेट हो गया, और मैं तुझे ऑर्डर करता हूं, तुझे आज्ञा करता हूं, तू अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। ऐसे ही बाबा ने फिर बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझे कमजोर कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। ऐसा कह के बाबा ने मन और बुद्धि को, दोनों को, क्योंकि सुमान की सीट पर बैठ के बाबा ने ऑर्डर किया। कोई भी आजकल की दुनिया में भी कोई अगर लौकिक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है या पॉलिटिकल लीडर होता है, जब तक सीट पर है सब उसकी बात मानेंगे, और जब रिटायर हो गया या ट्रांसफर हो गया या उतर गया, वहां पर नहीं है, कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। ऐसे ही हम भी चाहते तो हैं कि मन मंत्री मुझ आत्मा राजा की बात माने, लेकिन समान की सीट पर बैठे बिना हम ये चाहते हैं, तो इसलिए मन भी हमारी बात नहीं मानता। तो इसलिए कभी भी मन में बहुत व्यर्थ बहुत विचार चल रहे हों, हलचल हो मन के अंदर, तो पहले अपने को कुछ थोड़ा सा कुछ समानों में स्थित कर लो, जो बाबा ने अनेक अनेक सम्मान दिए हैं, मैं आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, बाबा ने मुझ आत्मा को चुना है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, सारी दुनिया के अंदर मुझ आत्मा को भगवान ने चुना है। ऐसे ऐसे बहुत जो सम्मान दिए हैं, पहले हम उन सम्मान में थोड़ा स्थित होके उसके बाद हम जो मन को चंचलता से हटाना चाहते हैं तब ऑर्डर करें। आप देखोगे तुरंत ही मन तो उस स्थिति में स्थित हो जाएगा, लेकिन पहले ये आवश्यक है कि हम थोड़ा सम्मान की सीट पर स्थित हो। तो इस रीति से मन जीते जगत जीत, तो मन को ना ये जितना जितना जीतते जाएंगे ये लक्षण स्पष्ट होते जाएंगे। और जगत में क्या क्या आता है, जगत में क्या क्या आता है, हाँ? केवल मनुष्य मात्र ही आते हैं क्या? नहीं, हाँ? सब आते हैं। हम मनुष्य तो आते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति के पांच तत्व, तो ये सब, इन सब के ऊपर विजय पानी है तब हम विश्व महाराज बनेंगे। वो मन जीत का लक्षण होता है। देखो भक्ति मार्ग में भी और द्वापर युग में भी ये भी कैसे प्रकृति के ऊपर जीत पाए हुए थे, जो साधारण तानसेन का सुनते हैं, ताना रीरी का सुना, भाई तानसेन ऐसे राग निकालता था, हाँ? जब दीपक राग निकालता था तो दीपक जल जाया करते थे संगीत से, और दीपक राग नहीं, हाँ दीपक, और मल्हार राग निकालता था तो बारिश होने लगती थी। यानी ये प्रकृति भी उसके वश में, जब ऑर्डिनरी भक्ति मार्ग के इन लोगों के वश में रही हुई है हम आत्माएं, तो प्रकृति जीत है जो। तो इसे हमें अपने को देखना है, इसके कोई भी चीज हो अब उसके एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए, और जितना जितना एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे हो सकता है शुरू में असफलता हो, लेकिन धीरे धीरे वो सफलता तुरंत होती जाती है। हमने तो कितनी बार एक्सपेरिमेंट किए हैं प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के अभियान तो बहुत निकाले हैं, पर्यावरण जागृति अभियान और डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन आदि आदि, लेकिन प्रकृति के ऊपर जब मानो कोई बादल है बरसने वाला है, आप देख रहे हो बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, बस जल देवता हम आपको ये ऑर्डर करते हैं कि अभी आपको दो घंटे तक यहाँ पर बरसना नहीं है। हे जल देवता, हम लोगों ने, हमारा अभियान निकल रहा था, उस समय ही बाबा की ये मुरली चली थी पूरी प्रकृति के ऊपर, कई एक सीरीज ऑफ मुरली चली है, कैसे विनाश होगा उस वक्त प्रकृति के, क्या रूप होगा उसका, क्या कार्य होगा विनाश में, फिर सफाई में क्या कार्य होगा, और फिर प्रकृति का स्थापना में क्या कार्य होगा। तो हमारा वहां पर अभियान निकल रहा था कनानूर के पास, और वहां पर हम लोगों ने ये भी उसी दिन बाबा की मुरली चली थी, उस इवनिंग में हम लोगों ने पढ़ी, और अगले दिन के लिए प्रोग्राम बनाया कि कल सुबह 4 बजे हम लोग समुद्र के किनारे, वो शहर था, वहां जाकर जल के ऊपर ये प्रयोग करेंगे। क्योंकि बाबा हमें चाहता है हम प्रकृति जीत भी बने, मन जीते नहीं, मन जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी। वहां गए सुबह हम सब लोग, 10-12 हम लोग अभियान वाले थे, और साथ में वहां की बहनें थी 5-6, हम सब लोग बस एक संकल्प के साथ, जो बाबा ने संकल्प उस मुरली में दिया था, हे जल देवता, हाँ आप भी देवता हो, हम सब भी होवनहार देवता हैं, आओ हम शेक हैंड करें, हाथ मिलाएं, आपके जो गुण हैं उन गुणों को हम धारण करें, हम धारण करके आइए आज पूरा प्रकृति को हम इतना शीतल बनाएं और शांतमय बनाएं। बहुत समुद्र एकदम शांत था, एक भी लहर नहीं थी, सुबह 4 से 5 बजे योग के लिए हम लोग गए थे। और आओ बाबा कहता है कि ये संगम युग है, इस संगम में ही हमारा होवनहार देवताओं का और आप जल तो प्रकृति के तत्वों का मिलन होता है, आओ हम लोग शेक हैंड करें, आप तक यदि हमारी भावनाएं पहुंच रही हैं तो आओ हमारा जल स्पर्श करिए, चरण स्पर्श करिए। और ऐसे संकल्प के साथ ना हम लोग बैठे, बहुत तेज संकल्प, और 4 हुआ 4:15 4:15 5:00 बजने में 5 मिनट भी हो गया, बस सब उसी शुद्ध संकल्प में बैठे हुए थे और बस जब दो तीन मिनट ही समाप्ति के थे तो पता नहीं समुद्र में कहां से एक बहुत तेज लहर आई और जहां हम लोग बैठे बहुत दूर बैठे हुए थे और वो आई पूरा वो हम सबके चरण स्पर्श करके वो लहर चली गई। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है लेकिन ये कितने बहन भाइयों से हमने अनुभव वेदांति बहन का अफ्रीका का अनुभव सुना सॉल्ट बनाने का तत्वों। तो बाबा ये चाहता है कि हम लोग ये अनुभव करें जीवन में। अगर अभी अनुभव नहीं किया तो सतयुग में तो प्रकृति जीत होंगे ही, वहां अनुभव की बात ही नहीं, वहां तो हमारे वश में प्रकृति होगी ही होगी। यही तो हमें प्रकृति जीत बनना है। वहां का उनका अनुभव था कि भाई अफ्रीका के लोग ना एक गांव के किनारे वहां रिट्रीट करने वो गए थे बहने, तो वहां जाके शाम को योग में बैठते थे। गांव वाले आते थे और कहते थे बहन जी हम लोगों के यहाँ पिछले 3 साल से हम लोग अपना धंधा नहीं कर पा रहे हैं। क्या धंधा था? समुद्र में ज्वार भाटा जैसे आता है, लहरें आती है, किनारे गड्ढे कर देते हैं, पानी भर जाता है, फिर जब सूर्य की गर्मी से पानी उड़ जाता है और वहां नमक बन जाता है, उसका वो व्यापार करते थे। तो बढ़ती नहीं हो रही है, चढ़ती नहीं हो रही है, तो हम क्या करें? आप थोड़ा भगवान से योग लगाओ, थोड़ा ये करो, उन्होंने अपने रीति से बोला। तो बहनों ने कहा भाई हम ये तो नहीं कह सकते कि ये होगा, लेकिन आपके बात हम ईश्वर तक अपने संकल्पों के द्वारा पहुंचा देते हैं। तो वहां रोज शाम को बहनें आती थीं, 3-4 दिन तक आते रहे। उसके बाद एकाएक ही ना ऐसा जो 3 वर्ष में भी उन्हें इतना अनुभव नहीं हुआ, तो बिल्कुल आता ही नहीं था वहां पर पानी, पूरा सूखा पड़ा हुआ था। तो कहां से बस उसके बाद वो आना शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में 1-2 उसके अंदर ही वो सारे उनके वो गड्ढे भर गए। बहुत हमारा पर्यावरण जागृति अभियान या युवा यात्रा में तो बहने गए हुए थे, उसमें कई बार ऐसे अनुभव हुए, गांव वाले कहते थे। भाव क्या है कहने का कि ये योग भी एक ऐसा चीज है प्रकृति जीत का, और बाबा का प्रकृति जीत का क्या देखा वो मैं आपको बताता हूँ। तो बाबा ने उस दिन जो क्लास कराई 18 जनवरी को, और बाबा हॉल के बाहर तक आए, और हॉल के बाहर तक आके बाबा ने फिर सब बच्चों को दृष्टि दी और बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये बाबा ने पहले कभी नहीं कहा था, हमेशा अच्छा बच्चों को मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जैसी स्थिति होती थी वैसा बाबा कह के चले जाते थे। लेकिन बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। तो भीष्म पितामह की तरह आभास हो जाना हाँ ये मेरा बच्चों से आखिरी मिलन है। तो बड़े प्यार से बाबा ने बार बार बच्चों को दृष्टि दी और बाबा की दृष्टि बार बार अपना दादी जी पर आके स्थित हो जाती थी। दादी प्रकाशमणि आगे ही बैठे हुए थे और बाबा बहुत देर तक दृष्टि देता था, फिर थोड़ी दृष्टि सबको दी, फिर दादी जी को दृष्टि देके बस बाबा कमरे में गए। और फिर तो अब सबको मालूम है बाबा ने कैसे देह त्याग किया। लेकिन वंडर बात तो ये है उसके बाद देखिए कि बाबा ये 18 जनवरी को अर्ली नाइट में बाबा ने देह त्याग किया। तो बाबा का शरीर रखा रहा पूरा 18 की रात, 19 का दिन 19 की रात, 20 का दिन 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, कुछ 65 घंटे जैसा भी तक शरीर रखा रहा। कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ, न काला पड़ा न कोई दुर्गंध आई, कोई भी ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब 21 तारीख को हम लोग बाबा को ये शांति स्तंभ के उधर अग्नि संस्कार के लिए ना यहाँ पर शरीर लाए, तो बाबा के शरीर में काफी हद तक ये फ्लेक्सिबिलिटी थी। नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है तो कुछ घंटों में ही शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। बहुत हद तक ना बस देखने में आ रहा था जैसे बाबा सोया ही हुआ है, और बस हमेशा की तरह उठ के बाबा कहेगा आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, वैसे ही गोरा रंग पूरा, कोई दुर्गंध नहीं किसी भी प्रकार की। ये प्रकृति जीत का लक्षण है। बाबा ने भी हिंट दिया था जब 13 दिन तक भोग लगे थे, प्रकृति जीत, प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति 5 तत्वों से ही तो बना हमारा ये शरीर है, तो प्रकृति के तत्वों पर हमने जितना जीत पाई होगी उतना ये प्रकृति हमारा अंत तक साथ देने के लिए बंधी हुई है। कैसे पाएंगे इन प्रकृति के तत्वों पर जीत? इन्हें रोज एक तो योगदान करें, जहां पर भी हो, पांचों चीज हो, जल हो, अग्नि हो, वायु, पृथ्वी, वास, थोड़ा सा देख के उनको हम थोड़ा शुद्ध संकल्पों का एक तो वाइब्रेशन दे, योगदान करें। ये जल तत्व किस रीति से कि एक एक तत्व के गुण को ना हम अपने गुणों से मैच करते जाए, देखते जाए। मानो जल है तत्व है, तो जल तत्व का मुख्य गुण क्या है? शीतलता। इससे भी ज्यादा एक बड़ा गुण है इफ एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अभी गिलास है, गिलास में पानी सेट हो गया, कटोरी में लोगे कटोरी में सेट हो जाएगा, चम्मच में लोगे चम्मच में सेट हो जाएगा, थाली में लोगे थाली। ऐसे ही मैं अपने संस्कारों को चेक करते चलूं कि मैं आत्मा सबके साथ एडजस्ट होके चल सकती हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं इनके साथ तो बहुत अच्छी एडजस्ट हो जाती हूं, इनके साथ एडजस्ट होके ना चल सकूं। हर आत्मा के साथ मैं एडजस्ट होके चल सकूं और सब आत्माएं मेरी हैं, मैं सब आत्माओं की हूं, हर एक से इतना अपनेपन की महसूसता। और पानी का क्या गुण होता है? पानी हमेशा आगे बढ़ता रहे, उसके सामने बहुत बड़ा पत्थर भी आ जाएगा, वो अपना रास्ता बना बनू के निकल जाएगा। ऐसे जीवन में हम सदा आगे बढ़ते रहे, कठिनाई, परीक्षाएं, प्रॉब्लम, समस्या रूपी पहाड़ आए, हम रुके नहीं, अपना रास्ता बना के निकल जाए। बाकी अगर समय पत्थर को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे, बाबा ने कहा, वो तो बहुत समय और एनर्जी लग जाएगी। और कैसे चेक करेंगे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? पानी भी अगर स्वच्छ होता है, बहती नदी होती है, फ्रेश वाटर रहेगा, लेकिन जहां भी पानी स्टैग्नेट हो गया, रुक गया, तो क्या होगा? मक्खी, मच्छर, बदबू, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे और उससे हमें पता चल जाएगा वाटर स्टैग्नेट हो गया, पानी रुक गया, बढ़ना आगे उसका खत्म हो गया। ऐसी हमारे भी जीवन में ना अगर कोई घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, छोटी मोटी बातें, बदला लेने की भावना, कोई ये बातें अगर पैदा, ये कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, समझना चाहिए मेरा भी आगे बढ़ने की गति में कहीं पर धीमापन आया है, रुकावट आई है। ऐसे बहुत गुण है पानी के, लेकिन यहां मैं सिर्फ एक एक गुण बताऊंगा। तो अगर पानी का गुण हमने एडजस्टमेंट का ही धारण किया हुआ होगा ना, तो क्या होगा? जितनी भी बड़ी से बड़ी पानी की समस्या आएगी, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, फ्लड, कुछ भी आएगा, लेकिन वो हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, हमारी दुख अशांति का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि पानी के गुण को मैंने धारण कर लिया, उसे फ्रेंड बना लिया, मित्र बना लिया, एंड ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। मित्र जो है हमेशा मित्र की सहायता करता है। कैसे सहायता करेगा? कि जब भी जल की तरफ से कोई बड़ी समस्या आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हमारा वॉइसलेस कनेक्शन है, ये तो टेलीफोन तो वायरलेस कनेक्शन होता है, लेकिन ये वायरलेस कनेक्शन जो है अंत में कोई काम नहीं देगा, यही वॉइसलेस कनेक्शन, निर्विकारी संबंध जो होगा ये काम देगा। और बाबा ने कहा, ये बाबा के महावाक्य है, कि मैं बंधा हुआ हूं बच्चों की सेफ्टी के लिए, बस प्रोवाइडेड बाबा जो भी वो दे संकल्प, बाबा जो भी सिग्नल दे उस सिग्नल को हम कैच कर लें, और वो तभी होगा हमारी फ्रीक्वेंसी मैचिंग बाबा के साथ होगी। और अंत समय में बाबा ने कहा है कि अंत समय में बच्चों के पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी, ऑटोमेटिकली हमें सोचना नहीं पड़ेगा, बस विचार आया, कोई समस्या आई, ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी और हम बच जाएंगे। तभी तो अंत मते सो गति होगा, अगर अंत में सारे ही बह गए और सारे इतराई इतराई कर रहे मर रहे ऐसे में ही प्राण निकले तो अंत मते सोगति थोड़ी होगा। उतनी तो शांति वातावरण में हो उतना जो प्रकृति जीत हम जितना बनेंगे ये प्रकृति कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। ऐसी धरती का बड़ा गुण कौन सा होता है? पृथ्वी का सहनशीलता। और पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दाता का, पृथ्वी देने वाली है। देखो कुछ भी चीज दो, गेहूं चावल पूरा अनाज फल फ्रूट पानी तेल हर चीज पृथ्वी देती है, पृथ्वी दाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चे पृथ्वी का ये गुण धारण कर लो, मैं दाता दाता बन के देते चलो सबको। देने का क्या मतलब? देने का मतलब कोई स्थूल चीजों का, खाना पानी या कपड़ा पैसा, ये तो लिमिटेड है, हर एक की परिस्थिति अलग अलग है। लेकिन दाता माने जो आए प्रेम शांति सहयोग सद्भावना उससे के प्रति शुभ भावना, जिस चीज में एक पैसा भी खर्च नहीं होता वो तो हम हमेशा ही दे सकते हैं ना। कोई भी आत्मा आए हमारे से लिए बिना ना जाए, कोई ना कोई ये पॉजिटिविटी का अनुभव करके जाएगी और जितना ये अनुभव करके वो जाएगी ले करके जाएगी ना, हम दाता बन गए तो उसका प्रमाण ये होगा कि पृथ्वी की तरफ से कोई भी परीक्षा है बड़े से बड़ा अर्थक्वेक आएगा, पूरी धरती हिलेगी, हजारों लाखों लोग मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी कंपन होने वाला होगा ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में वो टचिंग होगी, हमारे पैर उधर बढ़ेंगे। अभी भी बहुत से पशु पक्षी जीव जंतु ऐसे हैं, हम लोगों को भी एमटेक में पढ़ाया गया था, सांप है छिपकली है गाय भैंस, इन लोगों को क्योंकि लाइफ उनकी ना मैच करती है लाइफस्टाइल नेचर के साथ। हम सबकी ह्यूमन बीइंग्स की लाइफस्टाइल जो है जीवन जीने की पद्धति प्रकृति से थोड़ी विपरीत हो गई है, लेकिन जितना जितना जिनकी प्रकृति के साथ मैचिंग है उन सबको टच हो जाता है। और आप सबने भी पढ़ा होगा ये सब जानवर वगैरह भी बहुत अपना खूंटा तोड़ करके भी सेफ्टी की तरफ भाग जाते हैं, ऊंचे स्थानों पर चले जाते। साइंटिस्ट बहुत साल से खोज कर रहे हैं, अब कुछ कुछ थोड़ा वो पाए सके हैं इस बात का क्या कारण है उनको, क्या जानवरों में ऐसी क्या है जो हमारी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पकड़ नहीं सकते। तो ये है, तो ये बाबा ने बताया है पृथ्वी का अगर हमने ना ये दातापन का गुण धारण कर लिया हर एक आत्मा को देते चले तो अंत समय में कभी भी पृथ्वी जितना भी अर्थक्वेक आएंगे पृथ्वी हमारी मृत्यु का कारण नहीं, ऑटोमेटिकली हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी और बस हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, कोई प्रकृति के तत्वों के कारण दुख अशांति के कारण हमारी मृत्यु नहीं होगी, तभी तो अंतमते सोगति होगी। और जैसा अंत, आप सब में से कई लोग जॉब वाले होंगे, आप जानते हैं भाई रिटायरमेंट के बाद लास्ट पे सर्टिफिकेट एक होता है, लास्ट पे आपने जो ड्रॉ की है उसके आधार पर ही पूरे जीवन भर ग्रेजुटी मिलती है, पेंशन मिलती है, उसका फंड मिलता है, लास्ट पे जो ड्रॉ करते हैं। ऐसे हमारा जो लास्ट संकल्प होता है ना उसके आधार पर ही हमारे सतयुग से लेकर सारे जन्मों का वो पूरा का पूरा खेल उस पर निर्भर, इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी तो बाबा ने कहा है अचानक एवर रेडी और तीसरी चीज बहुत काल लंबे समय तक, जितना हमारा लंबे समय का अभ्यास होगा उतना अंत में जब ऐसी परिस्थिति होगी हम शरीर छोड़ने वाले होंगे उससे पहले हमने सब तरफ से समेट लिया होगा, ये समेटना बहुत आवश्यक है। ये पृथ्वी का है। और वायु का कौन सा गुण है? हल्का होती है वायु, देखो हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, ऐसे ही वायु हल्की, हर परिस्थिति में ना हम हल्का रहना सीखे। हमने खास ब्रह्मा बाबा और दादी जी में ये सब चीज देखी, इतने बड़े से बड़े पेपर आते थे कोई एकदम आके अरे बाबा ये हो गया ऐसा, दादी ये अच्छा थोड़ा सा सुना, फिर उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल, कोई हलचल एकदम नहीं, अरे क्या होगा कैसे होगा, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल जो भी परिस्थिति हो हर परिस्थिति में हम हल्के रहना सीखे। उससे क्या होगा, जितना वायु का ये गुण हमने धारण कर लिया होगा, क्योंकि वायु जब बहती है ना तो वायु अपने रीति से, बहुत साइक्लोन आते हैं समुद्र के किनारे भी बहुत 300-400 किलोमीटर की रफ्तार से, और विशेष करके आपने देखा होगा अमेरिका वगैरह में ये ज्यादा आते हैं, उन्होंने प्रकृति का दोहन ज्यादा किया है इसलिए, और किसी देश वालों को तो वो मतलब हरा नहीं, जीतने उसमें हरा देंगे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रकृति पर तो वश चलता नहीं। सबसे ज्यादा ये समस्याएं जो आ रही हैं पिछले कुछ वर्ष से डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा, ये साइक्लोनिक ऐसा ये, और इनसे क्या होता है तो उस पर उनका वश नहीं चलता, तो बहुत हवा चलेगी तेज, बहुत विनाशकारी लीला होगी, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में हल्के रहना सीखेंगे तो कभी भी ये वायु हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। ऐसे ही हाँ, आकाश, आकाश की तो जानते हैं ना कौन सी विशेषता है, कौन सा, विशालता, हृदय की विशालता चाहिए। बाबा ने कहा है बहुत आत्माएं आएंगी हाँ? और विशालता का प्रमाण क्या है, जिसका हृदय विशाल है उसका प्रमाण क्या है, कौन सा गुण विशेष होगा, क्षमा भाव। दूसरे की कितनी भी कमी कमजोरी देखेंगे, उसने हमारे लिए बहुत खराब किया है, लेकिन हमारे मन में कोई बदले की भावना नहीं, क्षमा भाव, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है कायर का व्यवहार नहीं, जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा। आज यहां बैठ के अपने अंदर देखो, किसी भी आत्मा के प्रति मेरे मन में कोई कटु भावना तो नहीं है, बदला लेने की भाव तो नहीं है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है लेकिन मेरे मन में उसके लिए रिवेंज, फीलिंग ऑफ रिवेंज तो नहीं है। अगर कुछ भी कटुता हुई तो क्या होगा, आकाश जैसी विशालता नहीं तो आकाश मार्ग से आने वाली जो प्रॉब्लम है ना वो हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। आकाश मार्ग से रॉकेट, मिसाइल्स, बम, ये सब, अतिवृष्टि, और आजकल तो देखना है ना सबसे बड़ा आकाश मार्ग से आने वाली प्रॉब्लम कौन सी हो रही है, प्रकृति की क्लाउड बर्स्ट, बादल फट जाते हैं, और बादल फटा विद इन नो टाइम बस 8-10 मीटर है, 8-10 मीटर पानी अब पहाड़ों के ऊपर, जो कभी कल्पना नहीं कर सकता कि पहाड़ों पर फ्लड आएगा, उत्तराखंड में फ्लड आएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इतने पहाड़ों की चोटी पर वो पूरा केदारनाथ ही बह गया। तो क्यों, क्योंकि आकाश हम जीवन में हल्का रहना नहीं सीखे, परिस्थिति आती है बहुत भारी हो जाते हैं, डावाडोल स्थिति, समय लग जाता है उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो आवश्यकता ये है हर परिस्थिति में हम अगर हल्के रहना सीखेंगे ना तो ये जो आकाश मार्ग से आने वाली जो भी समस्याएं होंगे वो हमारी दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बन सकेंगे। जितना भी होगा हमारे पैर सेफ्टी की तरफ होंगे। और अंत में सूर्य, पांचवा तत्व है ना अग्नि, अग्नि का स्वरूप प्रकृति में तो सूर्य है, सूर्य में कौन सा, अग्नि में कौन सा गुण होता है विशेष, मतलब अग्नि हरेक का रूप परिवर्तन कर देती है, तो इस गुण की हम बच्चों में बहुत आवश्यकता है। अग्नि इसीलिए बाबा ने कहा है वॉल्केनिक योगा, ये जो कौन सा योग हो, ज्वालामुखी योग बाबा कहते हैं ना, ऐसा योग हो, ज्वालामुखी योग हो, जो व्यक्ति, बाबा ने कहा रोता हुआ व्यक्ति आए उसका रूप परिवर्तन हो जाए, हंसता हुआ चला जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए सुख के सागर में बस डूब जाए और वो चली जाए। रूप परिवर्तन करने की क्षमता ये अग्नि का जो गुण है और हमने जब ये योग अग्नि का रूप धारण किया। बहुत है एक एक तत्व के गुण हमने तो एक एक लिया, और सबसे बड़ी बात ये म्यूचुअल एग्जिस्टेंस इन तत्वों में क्या विशेषता है। एक तरफ सूर्य बरस रहा है, अग्नि है, दूसरी तरफ बादल भी है, पानी, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, दुश्मन है एक दूसरे के लेकिन फिर भी साथ साथ रहते हैं। पृथ्वी का गुण नीचे खींचने का, वायु का गुण ऊपर, हल्का रिवर्स गुण है लेकिन साथ साथ रहते हैं पृथ्वी के ऊपर वायु। ऐसे ही हमें अपने से बिल्कुल अगेंस्ट संस्कार वाले के साथ रहने का अगर परिस्थिति है, बिल्कुल गुण एकदम विपरीत हैं, लेकिन फिर भी हम रह सके, ये न कहें कि इसके साथ तो हम चल सकते हैं, इसके साथ हमारा चलना असंभव है। तो मन जीते जगत जीत बनना सहज है लेकिन प्रकृति जीत, और ये प्रकृति के लिए हम अपने मन के साथ साथ ना इन प्रकृति के, तभी तो बाबा का देखा कि बाबा को 62 घंटे तक शरीर रखा रहा न शरीर में, ये इतना हमने बहुत डॉक्टरों से पूछा बाद में, आप में से भी हो सकता है कोई डॉक्टर बैठे हो कि ये कैसे संभव हो सकता है क्या ये कि शरीर में भी बिल्कुल दुर्गंध नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, अकड़न सबसे बड़ी बात है, स्टिफनेस बहुत कम, थोड़ी सी थी लेकिन स्टिफनेस वो नहीं। वो डॉक्टर तो कहते हैं ये तो आत्मा चली जाए, शारीरिक मेटाबॉलिज्म शरीर की खत्म हो जाती है, हो ही नहीं सकता, लेकिन ये ही प्रकृति जीत का लक्षण है। प्रकृति हमारे ऑर्डर पर चले और हम भीष्म पितामह की तरह शरीर छोड़े अपनी इच्छा से, तभी तो ब्यूटी है। अगर दुनिया के साथ किसी प्राकृतिक आपदाओं में हम भी मर गए तो क्या ब्यूटी हुई। ब्राह्मण भी अगर वैसे सभी मरते हैं, एक और मर गया, लेकिन अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, और ये तभी हो सकता है प्रकृति जीत। बाबा के सारे लक्षण सुबह से अगले दिन से देख लिए, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है सबसे जो भी गए हैं, और बाबा ही अभी तक कर्मातीत मन जीते जगत जीत होके गया। तो इसीलिए आइए हम सब लोग मिलकर भी ना ऐसे ही ये ही पुरुषार्थ रहे बाबा के साथ साथ, कि कैसे मन जीते जगत जीत के साथ जगत में प्रकृति भी आ जाती है तो प्रकृति को भी जीते हैं और जीत कर ही फिर इस संसार से विदा। ओम शांति, ओम शांति।
प्रकृति के पांचों ही तत्वों के भले एक एक गुण को ही हम सुन रहे थे, ये सभी गुण बाबा के ही गुण हैं, बाप समान बनने वाली बातें हैं, और ब्रह्मा बाबा ने, हमारे अलौकिक पिता ने, जिन्हें हमें फॉलो करना है, उन्होंने इन सब गुणों को अपनाया। तो जैसे हम सुन रहे थे कि फ्लेक्सिबिलिटी, प्रकृति पर जीत थी इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी थी और शरीर ये डिके नहीं हुआ ना, डिके नहीं हुआ वो, इसलिए ये सारे ही गुण उसमें जो सुनाया। आजकल दादी जान की भी इस गुण के बारे में बहुत चर्चा करते हैं और दुनिया में भी इस गुण की बहुत चर्चा है, और वो है फॉरगिवनेस। इसीलिए कहा है टू एर इज मैन बट टू फॉरगिव इज गॉड, कि अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो ये भगवान समान है। तो न केवल फॉरगिवनेस लेकिन बाकी भी पांचों तत्वों के सारे ही गुणों को अपना करके अगर हम उन पर प्रकृति पर जीत पा लेते हैं तो इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है। तो बहुत ही सुंदर रीति से आपने विषय को स्पष्ट किया है और मैं समझती हूँ आप सभी इन बातों को समझकर जरूर इन गुणों को अपने जीवन में और अधिक अपनाने का प्रयास करते रहेंगे, और अन्य भी जो इन तत्वों के गुण हैं उन गुणों को भी जरूर हम अपने जीवन में चिंतन कर अपनाएंगे और मन को जीत जगत जीत जरूर बनेंगे। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट योग करके फिर ठीक।
से बनता इन्हीं से अंबर है नीला।